आयशा ने अगली चाल चलते हुए निक को रीयूनियन पार्टी में बुलाकर इशिका के पति के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि निक और इशिका दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे थे कि वे दोनों पति पत्नी हैं। इस बीच एलिस ने इशिका पर फिर से वार करते हुए उसे अपनी शादी का प्रूफ देने के लिए कहा। वहां मौजूद कुछ लोगों को यही लगता था कि निक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इस वजह से इशिका उसकी और अपनी शादी को कबूल नहीं कर रही है। जब इस पूरे ड्रामा को बाहर से अभिमन्यु ने सुना तो वो बिना सोचे समझे अंदर आ गया। अभिमन्यु का चेहरा काफी कम लोगों ने देखा था। उसे देखकर एक लड़के ने कहा, अब ये कौन है? उसके बात का जवाब देते हुए दूसरे लड़के ने कहा, अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं, मैंने कल ही एक बिजनेस चैनल में इनका इंटरव्यू देखा था। ये मिस्टर अभिमन्यु राजवंश है और इस वक्त पूरे राजवंश एम्पायर की बागडोर इन्हीं के हाथ में है। उस लड़के के कहते ही नक्श ने कहा, हाँ ये मेरे चाचू हैं। हर कोई सम्मान से अभिमन्यु की तरफ देखने लगा, जिसे आयशा के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट थी। पहले नक्श के साथ शादी करना और फिर अभिमन्यु जैसे बड़े इंसान का उस पार्टी में शामिल होना उसका रुतबा बढ़ाने के लिए काफी था। नक्श ने खड़े होकर अभिमन्यु से पूछा, लेकिन चाचू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी जवाब देने से पहले अभिमन्यु ने एक नज़र इशिका और निक की तरफ गहरी निगाहों से देखा और फिर तुरंत ही अपनी नज़रें हटाते हुए जवाब में कहा, मैं यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। तभी पता चला कि आज प्रोफेसर मिलर का बर्थडे है, सोचा उन्हें विश कर दूं। हाँ क्यों नहीं, नक्श ने कहा और फिर अभिमन्यु को प्रोफेसर मिलर के पास वाली सीट पर बैठने के लिए लेकर गया। वहां पर इशिका बैठी हुई थी। इशिका ने तुरंत अभिमन्यु के लिए जगह खाली की और उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। वहीं निक भी एक सीट पर शिफ्ट हो चुका था। इशिका अब अभिमन्यु और निक के बीच में बैठी थी। उसका इस तरह उन दोनों के बीच होना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। इशिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त थे और वो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। इशिका उसे कुछ पूछ पाती उससे पहले प्रोफेसर मिलर ने इशिका से कहा, तो ये मिस्टर राजवंश है। इशिका मुझे याद आया कि तुम्हारे और मिस्टर राजवंश के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या वो दूर हो गई है? हाँ सर, अब पूरी तरह ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इशिका ने धीरे से जवाब दिया। चलो अच्छा हुआ, प्रोफेसर ने जवाब दिया। वो खुश थे क्योंकि इशिका भले ही डॉक्टर मर्चेंट हो लेकिन राजवंश फैमिली के लिए उसे बर्बाद करना बहुत आसान था। उसके बाद प्रोफेसर और अभिमन्यु थोड़ी बहुत बातें करने लगे। तभी इशिका ने महसूस किया कि निक ने उसके हाथ पर हल्की सी उंगली रखी थी। इशिका ने उसकी तरफ देखा तो निक बोला, मिस सिंघानिया, अब तो आपको याद आ गया होगा ना कि मैं कौन हूँ। सॉरी, इस तरह मेरी वजह से लोग आपको गलत तो समझ रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर ऐड हो सकते हैं? इशिका ने कुछ पल सोचा। हालांकि सब निक को गलत समझ रहे थे पर वो एक बुरा इंसान नहीं था। आयशा के एक बुलावे पर वो अपना काम छोड़कर वहां आया था। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और अपना QR कोड निकालकर उसके सामने कर दिया था। वहीं चरित की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई थी। उसने जब दोनों को नंबर एक्सचेंज करते देखा तो वो जल्दी से बोला, डॉक्टर मर्चेंट बिल्कुल ठीक बोल रही थी, ये आदमी उनके पति नहीं है, इन दोनों के पास तो एक दूसरे के नंबर तक नहीं है। एलिस उसके पास ही बैठी थी। वो झट से बोली, मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम अभी भी अपने बॉस को सपोर्ट कर रहे हो, वो तुम्हें कितना आसानी से मैनिपुलेट कर रही है और तुम उसकी बातों में आ भी रहे हो। चरित को एलिस पर गुस्सा तो आ रहा था पर उसने कोई सफाई नहीं दी। वो जानता था कि इशिका को कुछ डॉक्यूमेंट के लिए एक टेम्प्रेरी शादी की जरूरत थी लेकिन इसके लिए वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से तो कभी शादी नहीं करने वाली थी। वहीं उनके पास बैठा दूसरा लड़का बोला, एलिस तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही, बार बार इशिका को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि इशिका एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से शादी करेगी, जबकि उसके पास अच्छा खासा मौका था कि वो नक्श को हाँ कहकर राजवंश खानदान की बहू बन सकती थी। इशिका का पूरा बैच जानता था कि नक्श इशिका के पीछे है। जब नक्श ने उसकी बातें सुनी तो उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बांध ली थी। वो भी इशिका को पसंद करता था लेकिन तब तक जब तक कि उसके सामने इशिका के नाजायज बेटी होने की सच्चाई सामने नहीं आई थी। अगर वो इशिका को प्रपोज कर भी देता तो उर्वशी उनकी शादी कभी नहीं होने देती। एलिस जब इशिका और नक्श की शादी पर सवाल उठा ही रही थी तो आयशा ने तेज आवाज में कहा, वैसे तुम्हें बता दूं इशिका, इनके साथ साथ मैं भी हैरान हूं कि तुमने कंस्ट्रक्शन वर्कर से शादी क्यों की। जब कल घर पर ये हमसे मिलने के लिए आया था तो मॉम डैड ही परेशान हो गए थे। अब तक उन लोगों के सामने इशिका और आयशा के बहन होने की सच्चाई सामने नहीं आई थी। आयशा ने जानबूझकर मॉम डैड का जिक्र किया ताकि एलिस इस बात को आगे बढ़ाए। एलिस ने तुरंत उसकी बात को पकड़ते हुए कहा, इशिका तुम्हारे घर क्यों आएगी आयशा, और तुम्हारे मॉम डैड को क्या फर्क पड़ता है कि ये किसी से भी शादी करें? आयशा जानबूझकर जो कर रही थी वो अभिमन्यु को सब समझ आ रहा था। उसकी निगाहें सर्द रही थी और वो जवाब देने के लिए अपना मुंह खोल भी रहा था तभी उसने महसूस किया टेबल के नीचे से इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इशिका अभिमन्यु के इरादे समझ गई थी। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा तो उसने नामे सिर हिला दिया। इशिका ने बिल्कुल धीमी आवाज में अभिमन्यु से कहा, मुझे लोगों का सामना करना सीखना होगा, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने सख्ती से कहा। अभिमन्यु इशिका को रोकना चाहती थी तभी इशिका ने एलिस की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, ये हमारे घर गया था क्योंकि मैं सिंघानिया फैमिली की इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। आज इशिका ने हिम्मत करके सबके सामने अपनी पहचान बता दी थी, जबकि वो जानती थी कि वो आदर्श की बेटी नहीं है। ये सब बोलते हुए ऐशिका के सारे दर्द एक साथ ताजा हो गए। जब बचपन में मालविका उससे आयशा के सारे काम करवाती थी, उसे मारती पीटती थी, यहाँ तक कि उसे सिंघानिया मेंशन छोड़ने के लिए भी मालविका को मनाना पड़ा। बदले में मालविका ने उसके सामने शर्त रखी कि वो ठंड में पूरे 10 घंटे घुटनों के बल खड़े रहेगी। इतना सब करने के बाद ही उसे बाहर जाने की इजाजत मिली थी। ऐशिका नक्श के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, इसीलिए नक्श से कुछ छुपाना नहीं थी, बल्कि उसे उसके प्रपोज करने के बाद सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन नक्श ने उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाया और उसे छोड़कर आयशा को चुन लिया था। अचानक ही उस कमरे में शांति छा गई थी और सब ऐशिका की तरफ हैरानी से देखने लगे थे। ये सब सुनने के बाद एलिस जैसे लोगों को ऐशिका पर सवाल उठाने के और मौके मिल गए थे। सब आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। ओ माय गॉड, ये और आयशा बहनें हैं, एक लड़का बोला। बहनें कहना गलत होगा, ये दोनों सौतेली बहनें हैं। अगर आयशा की जगह मैं होती तो उस लड़की की तरफ देखती भी नहीं जिसने मेरी मॉम का घर खराब किया हो, उसकी बात के जवाब में दूसरी लड़की ने कहा। पर कुछ लोग ऐशिका का साथ दे रहे थे। उनमें एक लड़की ने कहा, इसमें ऐशिका की कोई गलती नहीं है, उसने मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया है। ये बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती थी, मैंने इसे देखा है, और इसने अपनी यूनिवर्सिटी फीस भी खुद ही पे की थी। इन सब में एलिस को अच्छा मौका मिल गया। वैसे भी उससे पहले उसकी काफी सारी इंसल्ट हो गई थी, तो बदला लेने के लिए उसने कहा, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। अब समझ में आया कि तुमने इस कंस्ट्रक्शन वर्कर से शादी क्यों की, क्योंकि तुम जैसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसकी माँ ने किसी का घर खराब किया हो।
चरित ने एलिस को डांटते हुए कहा, बस भी करो एलिस, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी माँ ने क्या किया है, और तुम खुद को क्यों इससे बेहतर समझ रही हो। ये डॉक्टर मर्चेंट है, भूल रही हो कि इन्होंने कितना कुछ अचीव किया है, और उनके आगे तुम्हारी क्या, यहाँ बैठे किसी भी क्लास फेलो की कोई औकात नहीं है। प्रोफेसर मिलर ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, कोई भी इंसान अपने माँ बाप को रिश्ते खुद नहीं चुनते हैं, ऐशिका की मॉम ने जो भी किया उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सबको बता दूं कि ऐशिका ने बहुत साल पहले ही घर छोड़ दिया था, और अपनी माँ को भी, इसने जो किया है उसकी रिस्पेक्ट करो। प्रोफेसर का साथ देते हुए सब एलिस को भला बुरा कहने लगे। ये देखकर आयशा ने राहत की सांस ली कि उसने एलिस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई थी। अगर उसने सब कुछ खुद से किया होता तो आज उसका वही हाल होता जो एलिस का हो रहा था। एलिस को इतना कुछ सुनाया जा चुका था कि उसकी आंखों में आंसू थे। आयशा ने महानता दिखाने का नाटक करते हुए कहा, मैं सर की बातों से पूरी तरह अग्री करती हूँ, और हमारी फैमिली ने भी ऐशिका को कभी अलग नहीं समझा, तभी मैं इससे पूछ रही हूँ कि इसने कंस्ट्रक्शन वर्कर से शादी क्यों की। पापा से एक बार बात कर लेती तो वो कभी तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से नहीं होने देते। अभिमन्यु अब ऐशिका के रुकने से रुकने वाला नहीं था, क्योंकि सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अभिमन्यु ने उन सब की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, हो गया तुम लोगों का, तुम सबको किसने कहा कि मिस सिंघानिया का पति कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अभिमन्यु की बात सुनकर नक्श और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज उनका यही प्लान था कि वो निक को वहां बुलाकर ऐशिका को सबके सामने शर्मिंदा करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह अभिमन्यु ऐशिका का साथ देने के लिए खड़ा हो जाएगा। आयशा अभिमन्यु के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन एलिस ने कहा, मिस्टर राजवंश, आप इतना शोर होकर कैसे कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐशिका का हस्बैंड नहीं है। इसने कंस्ट्रक्शन वर्कर के ही कपड़े पहने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा ये ठेकेदार होगा, पर काम तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पर ही करता है ना। अभिमन्यु की निगाहें सख्त हो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। उसने दरवाजे से ही कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे अंदर आना होगा। बाहर जो आदमी खड़ा था उसको किसी ने पहचान लिया था, और वो तेज आवाज में बोला, मिस्टर हिल, ये मिस्टर हिल है। बाहर जो आदमी खड़ा था उसने महंगा सूट पहना हुआ था। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं जिस कंपनी के साथ काम करने वाला हूँ उनका आपके साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं बस वहाँ एक इंटर्न हूँ, और मैंने आपको देखा था, उस लड़के ने मुस्कुराकर नजरी झुकाकर कहा। फिर उसने उन सबको बताते हुए कहा, एक्चुअली ये लंदन से आए हैं और रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इनका बिजनेस दुनिया भर में फैला हुआ है और किसी प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर आए हैं। वो सब हैरान थे कि इतना अमीर आदमी उनके बीच बैठा हुआ था। उनको यही लगा कि वो अभिमन्यु ही होगा। लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, और ना ही मेरी उनके साथ कोई बिजनेस डील हुई है, अभिमन्यु ने तुरंत कहा। तभी मिस्टर हिल चलकर निक के पास आए और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए बोले, मिस्टर मार्टिन, उम्मीद है आपने कंस्ट्रक्शन साइट की जान पड़ताल अच्छे से कर ली होगी। कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से ही बनाया गया है, बस आपको साइन करना बाकी है। निक मार्टिन का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था। वो लोग जिसे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर समझ रहे थे, वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून था। अचानक ही सब नजरें झुकाकर माफी मांगते हुए निक की तरफ देखने लगे। ऐशिका भी निक को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसका हाथ और भी कसके पकड़ लिया था। उन सबका ध्यान निक की तरफ था, तो किसी ने अभिमन्यु और इशिका की तरफ नहीं देखा। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ सख्त निगाहों से देखते हुए अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अभिमन्यु ने ना में सिर हिला दिया था। उल्टा उसने इशिका का हाथ और टाइटली पकड़ लिया था। इशिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। इशिका ने अभिमन्यु की नजरों को फॉलो किया तो वो निक को देख रहा था। एक पल के लिए अभिमन्यु की आंखों में जलन नजर आ रही थी, जिसे देखकर इशिका को मन ही मन हंसी आने लगी। सिग्नेचर करने के बाद निक ने इशिका की तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मिस इशिका सिंघानिया, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था, मैं निक मार्टिन हूं। इशिका को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपना हाथ मिलाने के लिए आगे भी नहीं बढ़ा सकती थी। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मजबूरी में इशिका ने अपना उल्टा हाथ आगे करके हैंडशेक किया। इशिका ने निक से हाथ मिलाया तब भी अभिमन्यु गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इशिका किसी और के साथ है। अब बोलने की बारी निक की थी। उसने एलिस की तरफ देखा और बोला, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं हूं। हाँ, साइट चेक करने के लिए इस तरह के कपड़े पहने, और काम करते वक्त कौन कपड़े और बाकी चीजों का ध्यान रखता है। एलिस पूरी तरह चौंक गई थी और अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं रहा था। चरित ने धीरे से कहा, हाँ, डॉक्टर मर्चेंट किसी आम इंसान से शादी कर भी कैसे सकती हैं। इनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बिजनेस टाइकून और एक रिसर्चर। इशिका ने इतने बड़े आदमी से शादी की, ये सोचकर इन नक्श और आयशा को जलन होने लगी। पर कहीं ना कहीं नक्श को अच्छा लग रहा था कि वो इशिका को हासिल नहीं कर पाया, तो वो अभिमन्यु को भी नहीं मिली। नक्श ये सोच ही रहा था तभी आयशा ने कहा, तो इशिका, सच में ये तुम्हारे पति नहीं है? तुम्हें क्या लगता है आयशा? इशिका ने भौहें चढ़ाकर कहा। आयशा को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तभी इशिका ने कहा, हाँ, ये मेरे पति नहीं है। उसके बाद निक ने सब कुछ क्लियर करते हुए कहा, ये सच कह रही है, कल इन्होंने मुझे बारिश में अम्ब्रेला दिया था। मैं बस उस अम्ब्रेला को लौटाने के लिए उनके घर पर गया था, तो उस लड़की ने मुझे व्हाट्सएप पर ऐड किया और ये कहा कि वो मुझे इशिका से मिलवाएगी। उसी के कहने पर मैं यहां आया था। ये बस एक गलतफहमी थी, आयशा ने जल्दी से कहा, हालांकि उसे मन ही मन राहत महसूस हो रही थी कि इशिका इतने अमीर आदमी की पत्नी नहीं है। फिर वो इशिका से बोली, ये सब गलतफहमी इस वजह से हुई क्योंकि हम सब तुम्हारे पति से मिलना चाहते थे। अब तुम इतनी बड़ी रिसर्चर हो तो तुमने किसी ऐसे वैसे इंसान से तो शादी नहीं की होगी ना। आयशा की बात पर सहमति जताते हुए बाकी लोग भी इशिका के पति से मिलने की बात कहने लगे। तभी उन्हें एक सख्त और गंभीर आवाज आई। वो अभिमन्यु की आवाज थी और उसने कहा, तुम लोगों को इशिका के पति से मिलने के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो यहीं पर मौजूद है। अभिमन्यु जिस मकसद से उस कमरे के अंदर आया था वो उसे पूरा करने जा रहा था। वो सबके सामने अपनी और इशिका की शादी रिवील करने वाला था।